हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय क्रमांक 12 महाराज रहुगण तथा जड़ भारत की वार्ता श्लोक क्रमांक 7।
शोचानि मास्त्वमधिकष्ट दीनाम्।
हरि बोल। ओके, यहाँ नीचे है, थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ,
शोचानि मास्त्वमधिकष्ट दीनाम्। शोचानि मास्त्वमधिकष्ट दीनाम्। विष्टया निग्रहणेरनुग्रहोऽसि। विष्टया निग्रहणेरनुग्रहोऽसि। जनस्य गोप्तस्मे विकस्तस्पानो। जनस्य गोप्तस्मे विकस्तमानो। न शोभसे वृद्ध सभा सुदृढ़दृष्टः। न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टः। शोचानि मास्त्वमधिकष्ट दीनान्। विष्टया निग्रहणेरनुग्रहोऽसि। जनस्य गोप्तस्मि विकस्तमानो। न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टः।
शोचान शोचनीय है, इमान ये सब, त्वाम तुम, अधिकष्ट दीनान अपनी दरिद्रता के कारण बेचारे लोग और अधिक कष्ट उठा रहे हैं। विष्टया बलपूर्वक निग्रहणान पकड़े हुए। निरग्रह अपि असि। तुम अत्यंत दया से हीन हो। जनस्य सामान्य लोगों का। गोप्ता असि मैं रक्षक राजा हूं। विकस्तनामाना ढिंग मारते हुए। न शोष्यसे तुम्हें शोभा नहीं देता। वृद्ध सभासु विद्वानों की सभा में। दृष्टः बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला उद्धत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत संस्कृत की। किंतु यहां सच है कि बेगारी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दयी हो। तो भी अहंकारवश तुम वह सोच रहे हो कि तुम प्रजा के रक्षक हो, यह हास्यास्पद है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। तात्पर्य, राजा रघुगण को अपने राजा होने का अभिमान था और वह सोचता था कि उसे अपनी प्रजा पर अपनी इच्छानुसार नियंत्रण रखने का उसे अधिकार था, जबकि वह बेगारी में लोगों से पालकी डुलवा कर आकरण ही उन्हें पीड़ित कर रहा था। इतना पर भी वह अपने को प्रजा का रक्षक मानता था। वस्तुतः राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए वह नर देवता अर्थात मनुष्यों में राजा कहलाता है। किंतु यदि राजा अपने को राज्य का प्रमुख समझकर प्रजा का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है तो वह गलती करता है। विद्वान ऐसी प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं करते। वैदिक नियमों के अनुसार राजा को विद्वान साधुओं ब्राह्मणों तथा विद्वानों से सलाह लेना चाहिए, जो कि धर्मशास्त्र में दिए गए आदेशों के अनुसार सलाह देते हैं। राजा का धर्म है कि वह इन आदेशों को माने। विद्वान जन राजा द्वारा प्रजा का उपयोग कभी पसंद नहीं करते। उसे चाहिए कि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करे। राजा को ऐसा दुष्ट नहीं सिद्ध होना चाहिए कि वह अपने स्वार्थ हेतु प्रजा का शोषण करे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के शासन डाकू तथा चोर होंगे। ये डाकू तथा चोर जनता के धन तथा उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक ले लेंगे। इसलिए श्री भगवान श्रीमद् भागवत में कहा गया है, राजैर्घृणैर् दस्यु धर्म भी, जो कलयुग पास आ रहा है, ये लक्षण पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानवीय सभ्यता किस अधोगति को प्राप्त होगी। निस्संदेह कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उनके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि सभी मनुष्य पशु तुल्य ही हो जाएंगे। उस समय जो सुधारने के लिए श्री कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, उनका कार्य होगा अंततः नास्तिकों का वध, क्योंकि अंततः विष्णु या कृष्ण ही वास्तविक त्राता है। जब तथाकथित राजा तथा राज्य के अमात्य कुव्यवस्था फैलाते हैं तो ईश्वर अवतार लेते हैं और व्यवस्था लाते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। निस्संदेह इसमें अनेक वर्ष लगते हैं, किंतु नियम यही है कि जब राजा या अमात्य उचित नियमों का पालन नहीं करते तो प्रकृति युद्ध अकाल इत्यादि के रूप में दंड देती है। अतः यदि वे जीवन के परम उद्देश्य से परिचित नहीं है तो उन्हें प्रजा पर शासन करने का भार नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तो भगवान विष्णु है, वह सबों का पालक है। राजा पिता तथा अभिभावक ये तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि मात्र होते हैं, जिनके ऊपर व्यवस्था की रखवाली तथा व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा को इस प्रकार रखे कि उसे अंततः जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। न ते विदो स्वार्थ घतिम हि विष्णु, दुर्भाग्यवश न तो राजा न ही जनता जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना और उन तक पहुंचना है। इस ज्ञान के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और सारे समाज में वंचकों और वंचितों की भरमार हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम राम हरे हरे। तो आज का ये श्लोक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि जड़ भारत, हालांकि वो पहले बिल्कुल एक भोले भाले व्यक्ति लग रहे थे, तो अभी जब राजा ने उनसे जिज्ञासा की तो अभी जड़ भारत जो है यहाँ राजा को बहुत अच्छे से डांट रहे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधु का अर्थ क्या है, कि जो सच्चाई बोलता है, आए एक व्यक्ति को ठीक रास्ते पर ले आता है और एक व्यक्ति को बताता है कि उसका कर्तव्य क्या है और प्रजाओं के प्रति उसका जो है यानी कार्य क्या होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर जैसे कोई पिता माता हो या गुरु हो, अगर वो अपने प्रजाओं को ठीक ढंग से उनको संभालते नहीं हैं और वो उन्हें अपने मनमाने रास्ते पर जाने देते हैं, तो वो जो है वास्तविक सच्चे उनके शुभचिंतक नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद जी जो है वो बता रहे थे, जैसे लोभी गुरु चंडाल चेला नरक में जाएंगे ठेलम ठेला। तो एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो एक बड़ा अजगर मरा हुआ गिरा था, बड़ा अजगर, और बहुत सारी लाल चींटियां ये अजगर को खा रही थी। तो सब शिष्य थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ये इसका क्या संकेत हो सकता है? तो प्रभुपाद जी उनको जो है पूर्व दृष्टि है, तो उन्होंने कहा ये जो अजगर है ये व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई बड़ा गुरु था और इसने काफी शिष्यों का शोषण किया था धन, तो वो क्या बन गया, अजगर बन गया और ये चींटी बन गए। अब ये लोग अपना जो भी धन दिया था वो वसूल कर रहे। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है कि एक व्यक्ति को तुरंत दंडित करना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टिट फॉर टैट, आई फॉर ए आई। तो पहले जमाने में क्या होता था कि राजा लोग क्या करते थे, कोई भी एक व्यक्ति कोई भी सजा अगर कोई किसी भी प्रकार का पाप करता है तो उसको उचित दंड तुरंत देते थे। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसका मतलब अगर हम किसी को उचित न्याय नहीं देते तो इसका मतलब उसको हमने न्याय दिया ही नहीं। तो आज कलयुग में हम देखते हैं यही हो रहा है। तो नीति शास्त्र में उल्लेख आता है लालन बहो दोष, लालन बहो दोष का मतलब है कि जब भी हम किसी को प्रेम से ये करते उसको समझाते नहीं तो उसके अंदर काफी दोष बढ़ने लगते हैं। जैसे कोई समझो आपके कपड़े में कुछ एक छेद हो गया, अगर उसको तुरंत नहीं सिलाएंगे तो धीरे धीरे वो बड़ा छेद हो जाएगा, फिर कोई आके उंगली मार देगा तो गया। तो आगे उल्लेख आता है पालन बहुओ गुणों, पालन बहुओ गुणों का अर्थ होता है कि जब भी हम बच्चों को या एक गुरु अपने शिष्यों को नियम सब ये बताता है तो उसके अंदर अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं। तो चाणक्य पंडित भी बताते हैं नीति शास्त्र में पंचवर्षनम लालनम तद अंतरम ताड़नम, वो बताते कि बच्चों को प्रेम देना चाहिए, 5 साल तक उनको बहुत प्रेम दे दो, उसके बाद में उसको डंडा दिखा दो। जैसे यशोदा मैया आप देखते हैं कि जब ये कृष्ण ने ये मटका तोड़ दिया था दामोदर लीला, तो उन्होंने सोचा भी हमारा कन्हैया बड़ा हो रहा है तो इसको डंडे से पीटना नहीं चाहिए लेकिन डंडा दिखाना चाहिए, डंडा दिखाने से डर जाएगा। लेकिन चाणक्य पंडित बताते हैं कि जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है समझदार हो जाता है फिर उसको एक मित्र के मापे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको जिंदगी भर डांटते रहो। काफी माता पिता ऐसे होते कि बच्चों को एक तो इतना प्रेम करेंगे वो तो बदमाश बन जाएगा, एक तो इतना उसको दुर्लक्ष करेंगे और एक उसको इतना डांटेंगे तो वो भी बेकार बन जाएगा। तो ये आवश्यक है कि कोई भी चीज में एक लिमिट होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में आजकल के जितने भी नेतागण है, यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, तो भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो उसका हम अभी स्लाइड शो दिखाएंगे। तो अभी आप देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने एक उपन्यास लिखा था, आज का MLA राम अवतार। अभी कुछ अगले साल तो भारत में इलेक्शन होने वाला है और आप देखते हैं कि अभी से सब लोगों की तैयारी हो रही है, एक दूसरे को नीचे खींचो। तो इसमें आज का MLA राम अवतार में ऐसे दिखाया है नॉवेल में कि ये कोई बड़े मंत्री थे और वो अपने लड़के का जो है ये संस्कार करने जा रहे थे। एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, तो ये 5 से 11 साल तक उपनयन संस्कार करते हैं। तो जो पंडित जी थे उनको बुलाया था, पंडित जी क्या क्या लाना पड़ेगा संस्कार के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक थाली ले आओ, थाली के अंदर एक भगवद गीता रख दो, एक दारू की बॉटल, एक बंदूक और एक 500 रुपए की गड्डी, ये काफी पुरानी, उस समय 2000 का नोट नहीं था। तो फिर वो बच्चा जैसे उधर आ गया तो उसको जीन्स पैंट ये वो सब पहनाया था, उसका कुछ उसमें बच्चे में कुछ संस्कार हुआ ही नहीं था। कहा जाता है कि सम इति आकार इति संस्कार। तो उस नेता के काफी मित्र आए थे देखने के लिए संस्कार, तो बच्चे को आगे भेजा। जैसे आप देखते कि जब निमाय पंडित का ही हुआ था संस्कार, तो बच्चे ने जाके उन्होंने क्या लिया, भागवतम लिया। तो पहले लोग क्या करते थे, धन रखते थे, कुछ अनाज रखते थे, कुछ किताब रखते थे। तो यहां क्या हो गया कि इस बच्चे ने जाके पहले गीता लेके अपने खाक में डाल दिया, बॉटल लेके जेब में डाल दिया, बंदूक पिछली जेब में डाल दिया और 500 का नोट उसने अपनी बटन खोल के अंदर डाल दिया। तो सब देखते रह गए, काफी लोगों ने ताली बजा रहे, वाह इसने तो सब कुछ अपनाया। तो उन्होंने उनको पूछा पंडित जी से, अरे पंडित जी ये क्या बनेंगे बताओ, ये तो हमारे नेता बनेंगे आज के MLA राम अवतार, तो आज की ये स्थिति है कि आज लोगों को राम चाहिए लेकिन राम राज नहीं चाहिए, राम नहीं चाहिए राम राज चाहिए लेकिन राम भगवान नहीं चाहिए। तो ये स्थिति है। जैसे आप देखते हैं कि जब भी प्रभुपाद जी ने ये झू में जगह लिया था, ऐसे एक उद्दंड व्यक्ति थे तो उसने भी ये सोचा था चलो हम भी प्रभुपाद जी को इनको भी ठग देते हैं, साधु हैं। तो उस व्यक्ति ने काफी प्रयास किया प्रभुपाद जी से जमीन वापस लेने का, ये काफी बड़ी कथा है। तो कलयुग में हम देखते हैं कि लोग साधु को भी यानी छोड़ते नहीं, तो ये अभी स्थिति आ गई है। तो एक बार भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि आज लोग है नेता को उसके पॉपुलरिटी के ऊपर उसको ये करते वोट, लेकिन उसके गुणों के ऊपर वोट नहीं करते, उसका गुण देखना चाहिए, गुण कर्म विभाग से वो नहीं देखते कि वो कितना पॉपुलर वो देखते। तो भक्ति चारू महाराज एक बार बता रहे थे कि समझो अगर आप हवाई जहाज से जा रहे, आप लोग तो अक्सर हवाई जहाज कोई जाता होगा तो उसको एक एक्सपीरियंस होगा, वो पायलट ही एरोप्लेन चलाएगा। तो अगर कोई लोग कहने लगे कि अरे देखो आज हमारे नेता हमारे साथ है तो हमारे नेता जो है वो एरोप्लेन चलाएंगे, क्योंकि पॉपुलरिटी मेजोरिटी है कि नहीं, तो क्या होगा, क्या ये संभव है, क्या वो हवाई जहाज उड़ेगा या दूसरी जगह हम पहुंच जाएंगे, नहीं ये मुमकिन है नहीं। तो आज कलयुग में ये स्थिति है कि लोग जो है जिन नेताओं को चुन रहे हैं वो नहीं जानते कि इसके अंदर कितने अच्छे गुण है कितने अवगुण है वो नहीं देख रहे। तो ये आवश्यक है कि अगर हम किसी नेता को चुनते हैं तो उसके पहले तो कम से कम गुण तो देख लो। तो प्रभुपाद जी एक बार इंदिरा गांधी को मिलने गए थे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा था कि देखो आप जितने भी मंत्री चुनेंगे इनको 16 माला जाप 4 नियम इनको ये पालन करना पड़ेगा तभी वो मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर हम मंत्री बनाएंगे तो कुछ हो सकता है। तो भागवतम में आप देखते कि एक राजा अंग थे, उनका एक पुत्र था वेण। तो इसकी बहुत बड़ी लंबी कथा आती है, लेकिन संक्षिप्त में हम देखते हैं कि वेण जो है, जब भी उसको राजा बनाया गया, राजा अंग तो पक गए थे, वो अपना राज छोड़ के चले गए जंगल में। तो जब ये वेण ये राजा बन गया तो वो ब्राह्मणों को कहने लगा, अरे आप लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए, आप मुझे सलाह दे रहे। वास्तविक में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि राजाओं को जो है ब्राह्मणों से ये जो है सलाह लेना चाहिए। तो वेण क्या कहता है कि देखो, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो, यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो, पर असल में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी और की तलाश में हो। तो ये राजा वेण कहता है किसको, वो ब्राह्मणों को। तो जब भी वेण को राजा बनाया गया तो ऐसे बताया था कि उस समय जितने भी डकैत चोर ये लोग जो है वो ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ गया, सब जगह चोरी डकैती। आजकल आप देख रहे हैं कि मीडिया में यही दिखाया जा रहा है, यही हो रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि उन्होंने सोचा चलो हम राजा को समझाते हैं अच्छे वचन से, लेकिन वो राजा उनकी बात नहीं मान रहा था। तो अंत में उन्होंने क्या सोचा, चलो अभी इसको अच्छा है, ये तो अच्छी बातों से मानने वाला नहीं। तो फिर उन्होंने मंत्र के द्वारा क्या कर दिया, राजा वेण का जो है उसकी हत्या कर दी। तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब एक व्यक्ति को ऊंचा स्तर मिलता है, पोजीशन मिलता है, तो उस व्यक्ति के कुछ जवाबदारियां होती है, उस व्यक्ति की कुछ जवाबदारियां होती है, अगर वो उसको निभा नहीं पाता है तो वो कुछ अच्छा आदर्श नहीं रखता है। तो गीता में भी भगवान बताते हैं, यदित आचरत श्रेष्ठ तत्त एवे तरो जना स यद प्रमाणम कुरुसे लोकस तद अनुवर्तते। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे, अपनी आचारी सिखाई बु समार, वैष्णव अल्प छिद्र सर्व जगत गाय। अगर एक व्यक्ति, एक वैष्णव अगर कुछ गलत कार्य करता है तो सारे लोग सोचेंगे अरे ये देखो ये ऐसे कर रहा है। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को जब ज्ञान दे रहे थे तो ऋषभदेव ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को ये श्लोक का हमें अवश्य जो है उद्गार करना चाहिए। तो ऋषभदेव बताते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात् पितम न सस्यात्, मोचयेत् समपेत्यु मृत्युम। जो अपने आश्रितों को बार बार के जन्म मृत्यु के पद से न उभार सके, उसे कभी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ ऋषभदेव जो है वो बता रहे कि एक व्यक्ति को क्या नहीं बनना चाहिए। तो ऋषभदेव के अनुसार यहाँ यही उल्लेख दिया है कि वो बता रहे कि अगर एक व्यक्ति जवाबदारी अगर ले नहीं सकता है, तो अगर अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु से भार उभार नहीं सकता है, तो उसे कभी गुरु पिता पति माँ आराध्य देव का मतलब एक राजा भी नहीं बनना चाहिए। तो आप देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हाँ वो कहते थे कि जब हम प्रचार करते तो हमें दो दो गैलन हमें खून बहाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें कुछ एक आदर्श दिखाना पड़ेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने को हर समय एक नम्र ये मानते थे, क्या मानते थे, दूसरों का वो कहते थे दासोस्मि, हम आपके क्या है, सर्वेंट हैं। तो उसी प्रकार आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अपने शिष्यों को खत लिखे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं यूर एवर वेल विशर, इसका अर्थ है कि आपके शुभ चिंतक। तो अभी आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ये हमें यहाँ ये बता रहे कि अगर हमें दूसरों का अगर शुभ चिंतक बनना है तो हमें उनका यानी जो भी है उनके प्रति हमने जो जवाबदारी ली है उसको निभाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति जो है वास्तविक में जो लोगों को उभार सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कलयुग में हम देखते हैं कि लोग जो है वो आचरण नहीं करते, और कलयुग का जो है वास्तविक जो है दोष वो अगर देखते हैं कि लोग जो है जो नेता है उनको देख के आचरण करते हैं। तो आज आप लोगों को हम यहाँ संक्षिप्त में जो है कुछ कलियुग के जो घोर लक्षण है और जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आता है, तो उसका संक्षिप्त में यहाँ उल्लेख करते हैं। अभी समय कुछ ज्यादा नहीं है, तो अगर देखते हैं कि कलियुग के जो घोर लक्षण है इनका जो उल्लेख है ये पहले स्कंद के पहले अध्याय में जो ऋषि जो थे नैमिषारण्य के, उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। इसको बड़ा बड़ा एक कर दो ना, इसका इसका सेटिंग किसके पास, इसको एक 16 इसमें नहीं है, उसमें सेटिंग में ये करना होगा बड़ा स्क्रीन आने के लिए। हरि बोल, इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देना। तो हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून, वे झगड़ालू आलसी पदभ्रष्ट अभागे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहेंगे। तो व्यासदेव जी बताते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान भगवत धाम गए तो उन्होंने भागवत पुराण लिखा है। तो धर्म के चार खंभे हैं, इसको बड़े इसमें डालो ना, इसमें 16.4 एक आता है उसमें डाल दो, अगर आपको मालूम है तो देख लो। हाँ, तो आप लोग यहां देख सकते हैं पावर पॉइंट में, ये चार खंभे क्या है, तपस्या, दया भावना, सत्य भावना और स्वच्छता। तपस्या से क्या होता है, अगर नशा पान करने से तपस्या भंग हो जाता है, मांसाहार करने से दया भावना वो कम हो जाती है, जुआ खेलने से सत्य भावना की कमी होती है और अवैध संग करने से स्वच्छता। तो जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 12वें स्कंद में, ततश अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षति वायुर आयुर बल स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कलयुग के प्रबल शक्ति के कारण धर्म, सच्चाई, सफाई, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति इनमें दिन प्रतिदिन घटोती होती रहेगी। तो अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग के लक्षण अभी से नजर आने लग गए हैं। अभी आप देखते हैं कि पहले लोग डेली मंदिर जाते थे, आजकल किसी को व्यक्ति को हफ्ते में एक बार जाना भी बड़ा हो जाता है। फिर सच्चाई, बहुत ही कम लोग हैं जो सच बोलते हैं आजकल। फिर सहनशीलता, हाँ, लोगों के अंदर जो सहनशीलता है वो भी कम हो गई। और सफाई, आप लोग देखते हैं कि कहीं भी सफाई तो बहुत कम जगह मिलेगी जहां आपको अच्छी सफाई दिखाई देगी। फिर दया की भावना, अभी कुछ कल के अखबार में ऐसा आया था कि कलकत्ता में मांसाहार के दुकान 60% अभी बंद हो गए, कारण क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि कुत्ते का मांस उसमें बेच रहे, कुत्ते का मांस। तो अभी खाने वालों को भी डर लग रहा है, अभी कुत्ते का मांस खाना पड़ रहा है। उसी प्रकार पाकिस्तान में वहां गधे का मांस, तो गधे का सुअर का मांस खाना पाप समझा जाता है। तो अभी ये सब कलयुग के लक्षण है कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ होटल वाले कुत्ते का भी मांस खिलाएंगे, आगे पता नहीं क्या खिलाएंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब भी पशु हत्या करते हैं तो दया भावना कम हो जाती है। फिर जीवन की अवधि, अभी तो लोग 60-70 साल जिएंगे तो बड़ी बड़ी बात है, तो आगे जाके धीरे धीरे जीवन की अवधि कलयुग में बताया जाता है कि एक व्यक्ति 20 साल जी लिया तो बहुत होगा। आजकल अमेरिका में, यूरोप में अगर कोई 100 साल जी लेता है तो मीडिया वाले जाके उसका फोटो सब कुछ अखबार में डालते हैं, अरे वाह 100 साल बधाई हो। तो फिर शारीरिक बल, अभी 50 साल पहले लोग 100 किलो की बोरी गोनी चीनी या गेहूं चावल की बोरी उठा लेते थे, आजकल लोगों के अंदर मार्केट भी जाएंगे तो 1-2 किलो की यानी वो थैला नहीं उठा सकते। तो जितने भी आजकल बड़े बड़े जो थैले हैं वो 20 या ज्यादा से ज्यादा 50 किलो, उससे ज्यादा तो वजन कोई ढो नहीं सकता है। फिर स्मरण शक्ति, तो आजकल स्मरण शक्ति सब कंप्यूटर और मोबाइल में चली गई, अभी स्मरण शक्ति सबकी कम हो गई। फिर वर्णाश्रम पर असर, आजकल तो कोई वर्णाश्रम का पालन करता ही नहीं, लोगों को धोती डालने में भी शर्म आता है, भक्तों को भी जो है कभी कभी उनको धोती डालने के लिए भी थोड़ा शर्म आता है, मंदिर में आके धोती डालते हैं। फिर वेद और ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, नास्तिकवाद और बनावटी लोग शास्त्रों पर टीकाएं करेंगे और भागवत सप्ताह किया करेंगे, तो ये अभी चल रहा है। राजनीतिक नेतागण विभिन्न प्रकार के प्रबल करों द्वारा प्रजाओं का भक्षण करेंगे, तो आप देखते हैं कि GST से लेके पता नहीं आगे कौन सा टैक्स आने वाला है। फिर ब्राह्मण और पुजारी, अधिकतर ब्राह्मण और पुजारी लोग परिवार और उधर सेवा में व्यस्त रहेंगे, तो जितने भी प्राइवेट मंदिर है वो क्या है, उधर भरण और अपना घर। फिर व्यापारीगण अवैध ढंग से काला धन और अन्य दगाबाज व्यापार किया करेंगे, तो आप देखते हैं कि ये नोटबंदी से बताया जाता है कि बहुत सारा जो है ये है जो काला धन है उसका नष्ट हो गया। लोग कोई भी घटिया व्यवसाय स्वीकार करेंगे। आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े जो है जिन्होंने डिग्री लिया है उनको भी जो है इन्हें रिक्शा का ड्राइवर बनना पड़ रहा है या पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये स्थिति अभी आ गई है। तो क्योंकि आजकल लोगों के पास कोई अगर इंजीनियरिंग भी करता है तो उसको 10,000 का भी तनख्वाह मिलना मुश्किल है, ये स्थिति हो गई है। सेवक मालकों को त्याग देंगे, बच्चे माता पिता को त्याग देंगे। हाँ ये सच्चाई है, अभी समय नहीं कि मैं इसका पूरा उल्लेख करूं। तो आज देखते हैं कि आजकल एक अच्छा नौकर मिलना मुश्किल हो गया है और बच्चे बस माता पिता को छोड़कर वो बस कहाँ जा रहे हैं अपनी नौकरी करने के लिए, तो ये आजकल की स्थिति है। फिर कंपनियों के मालिक लोग असमर्थ सेवकों को त्याग देंगे। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो मालिक होते हैं अगर एक व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको कहते हैं चलो निकलो भागो, तो ये जो है स्थिति है। आगे गौ माता को लोग त्याग देंगे और उन्हें पवित्र नहीं समझेंगे। तो आप देखते हैं कि आज गाय की क्या स्थिति है कि वृंदावन जो है एक गाय का जमीन है और यहाँ क्या कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग बांध रहे हैं लेकिन गाय को चरने के लिए जगह नहीं, गाय कचरा खा रही है, तो ये कलयुग की स्थिति आ गई है। लेकिन गाय की जगह लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्तों के लिए क्या नहीं करते लोग, और आज मार्केट में कुत्ते के लिए क्या नहीं है, कुत्तों के लिए सब कुछ मिलता है मार्केट में। हाँ कुत्ते का सॉक्स से लेके स्वेटर से लेके जूता से लेके कुत्ते का साबुन से लेके शैम्पू बिस्किट सब कुछ मिलेगा विदेशों में। वो अभी जो है वो क्या कहते हैं वो विदेश की जो ये है वहां का जो संस्कृति वो भारत में भी आ रहा है, खास करके गुड़गांव अगर आप कभी जाओगे दिल्ली बंबई कलकत्ता वहां आपको ये सब नजर आएगा। सारे ब्राह्मण लोग कोई शास्त्र विधियों का पालन नहीं करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जो भी 10 प्रकार के संस्कार बताए हैं तो कोई व्यक्ति आजकल संस्कार नहीं करते। जो शहरों में रहते लोगों के पास बच्चों के लिए संस्कार करने का टाइम ही नहीं है, जैसे कान का ये करते हैं कर्ण छेद या बहुत सारे मुंडन है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। फिर सारे गृहस्थी परिवार में अधिकतर लोग आहार निद्रा भय मैथुन इसी में गृहस्थी जीवन इसी में चला जाएगा। वानप्रस्थ लोग अपना गांव नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भागवत में उल्लेख आता है पंचशो ओर्धम वनम रजेत, यानी प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं चौथे स्कंद में ये कंपल्सरी है कि एक व्यक्ति को 50 साल के बाद घर छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज कलयुग में कोई घर छोड़ता नहीं, जैसे धृतराष्ट्र के मापी कुत्ते के मापी बने रहेंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। सन्यासी गण पैसे और धन के लिए लोभी होंगे। हाँ आज आप देखते हैं कि काफी लोग गुरु पूर्णिमा करते हैं और गुरु जी को अपना दक्षिणा देते हैं, फिर साल भर अपना पाप करते रहो, साल में एक बार आके टैक्स दे दो, तो यही रीति रिवाज चल रहा है। धन एक अच्छा संकेत, हाँ सबसे बड़ा रुपया, तो हर एक व्यक्ति धन के लिए वो है क्या हो गया है, अंधा हो गया है। कानून और न्याय, जिसके पास ज्यादा शारीरिक बल और धन होगा वह शासन करेगा। तो आजकल हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले 500 का नोट दारू और चिकन ये जो है नेता लोग इसका वितरण करते हैं लोगों को, और गांव के लोग भी बड़े होशियार है, जो भी नेता आएगा उसका होर्डिंग लगाते हैं, वो निकल गया दूसरे का, क्योंकि सबसे नॉर्मल भी बढ़िया भी बुद्धिमान हो गए, वो भी ऐसा डबल काम कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं शारीरिक संभोग के लिए लोग आपस में शारीरिक संबंध रखेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो आज भारत ने ये भी कानून पास किया है कि बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं, वो भी कानून पास हो गया। व्यापार में सफलता धोखेबाजी छल और कपट कार्यों से होगा। स्त्री और पुरुष का बल वो क्या है कि काम वासना में। जातिवाद ब्राह्मण लोग सिर्फ वो दिखावा के लिए, बस हम भी ब्राह्मण है, लेकिन दुकान कौन सा है, जूते का दुकान है। व्यक्तिगत अखंडता, अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह काम योग नहीं कर्म योग नहीं कर सकता है तो वहां जो है उसके ऊपर लोग शक करेंगे। फिर शिक्षित व्यक्ति, जो व्यक्ति हाथ की सफाई में निपुण है वह बड़ा पंडित माना जाएगा। हाँ, जिसकी बोलने की वाक वाणी अच्छी है तो उसको कहेंगे अरे वाह क्या बात किया। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल जो है लोग जो है एक जलाश्रय मानेंगे। हाँ, उसमें जाके आचमन वगैरह नहीं करेंगे। अब आप देखते हैं कि आजकल वृंदावन में भी काफी जगह विकास हो रहा है, लेकिन कितने लोग वहां जाके आचमन करते, पानी मुंह में लेते, बहुत कम। फिर शारीरिक सुंदरता, विभिन्न प्रकार के केस का बनावट, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग हेयर स्टाइल, बच्चों से लेके हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई प्रकार का एक अद्भुत विपरीति हेयर स्टाइल होता है। उदर भरण कर्म, जीवन का एकमात्र उद्देश्य वो है खाते रहो। आज देखते हैं कि लोग हर एक दो घंटे में खाते रहते हैं। आप कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे आप देखेंगे कि लोग ट्रेन में हर आधे घंटे में एक घंटे में खाते रहते हैं, और इस प्रकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी का बीमारी है। भारत में आज तीन बीमारियां सबसे ज्यादा है, एसिडिटी, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम। फिर साहसिकता, आजकल जितने भी सेल्फी लेते हैं फोन में सेल्फी, ट्रेन के पास खड़े हो जाओ, ड्राइवर को बेचारा ड्राइवर भी डर जाता है, वो अपना आंख बंद कर लेता है। लोग अपना एक एडवेंचर, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत हो गया कि लोग अपना साहस दिखाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक नया नौटंकी करेंगे। तो ये कलयुग का एक लोगों का एक दिखावा होगा। वह निपुण पुरुष होगा जो एक परिवार चलाएगा। अगर एक व्यक्ति घर चलाता है तो लोग कहेंगे अरे वाह बढ़िया। धर्म के नियमों का पालन, प्रतिष्ठा गौरव और झूठा दिखावे के लिए लोग पालन करेंगे। अगर आप देखते कि दुर्गा गणेश जी को क्या करते हैं, बाद में कचरे के पानी में डाल देते हैं। अगर बंबई में आप गणेश चतुर्थी आप देखोगे तो बेचारा गणेश जी पता नहीं कितना रोता होगा। एक तो जो लेके जाते हैं वो सब तो टाइट रहते हैं, और बस गणेश जी को जाके वहां समुद्र में आधा गणेश जी डूबे है आधा ऊपर है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि आप देखते कि होली अगर आप देखें ब्रज का एक अच्छा त्योहार है, लेकिन अभी इस होली का एक दो भंगी होली भी हो गया, यानी गटर का पानी मल मूत्र शरीर में डाल देते। तो ये अभी स्थिति आ गई है कि लोग धर्म एक दिखावा करने के लिए, बंबई में जितने भी गणेश चतुर्थी या दुर्गा, अभी आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि वृंदावन में दुर्गा का यानी जो है नवरात्र, या आजकल साईं बाबा के भी मंदिर बन रहे हैं यहाँ वृंदावन में। ये तो लोगों को यानी वास्तविक भक्ति किसकी करनी है, वृंदावन में रह के ये मालूम नहीं कि वृंदावन में भक्ति किसकी करनी चाहिए। तो ये दशा अभी हो गई है। फिर राजनीतिक अधिकार, जो समाज का वर्ग ताकतवान है राजनीतिक शासन करेगा। फिर आगे निर्दयी प्रशासक गण क्रूर शासकों के द्वारा नागरिकों के धन को लूटने के कारण लोग जंगलों में भाग जाएंगे। फिर अकाल की परिस्थिति, तो आगे हो सकता है कि लोगों को मिट्टी सूखे पत्ते कंदमूल मांस ये खाना पड़ेगा, ये आगे अकाल की स्थिति आ सकती है। फिर लोग पीड़ित होंगे, क्यों, अधिक ठंडी गर्मी हवा बारिश और बर्फ के उपद्रव से पीड़ित होंगे। अभी आप देखते हैं कि आजकल मौसम में इतना बदलाव आ गया है कि आप अनुमान नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। अभी इस साल आपने बहुत देखा होगा, तो ये हो रहा है। फिर उपद्रवों से पीड़ित प्रजाएं, झगड़े भूखमरी चोरियां डकैती बीमारियां और कठोर चिंताएं, तो इससे ज्यादा लोग जो है वो पीड़ित रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि जीवन की अवधि वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मानव शरीर, मानव की ऊंचाई आदमी 4 फुट का ही होगा, आजकल 5.5 तक है। फिर वर्ण और आश्रम पद्धति का पूरी तरह नाश होगा। अभी तो थोड़ा बहुत धोती कुर्ता दिखाई दे रहा है, और एक 10-20 साल के बाद में ये धोती कुर्ता दिखना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई संस्कार नहीं होंगे। अब देखते हैं कि लोग आजकल कोई संस्कार करते नहीं, फिर अगर बच्चे ज्यादा मस्ती करते तो कहते हैं अरे ये हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने संस्कार किया ही नहीं उनके ऊपर। फिर शासक और राजगण ज्यादातर से चोर और दुर्जन होंगे। आज का श्लोक में यही उल्लेख आता है कि राजा रहुगण, हालांकि वो अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझ रहा था और लोगों से वो जबरदस्ती कार्य ले रहा था, तो हाल ही में एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक ऐसी कंपनी है फर्टिलाइजर बनाती है जो 7 रुपए से मिट्टी खरीदती है और वो 700 रुपए किलो से मिट्टी बेचते हैं लोग उसको क्लीन करके। एक जो है मिट्टी यानी एक फर्टिलाइजर कंपनी है, 7 रुपए किलो मिट्टी लेते हैं और 700 रुपए से बेचते हैं, तो आप अनुमान लगाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि तुच्छ लोगों लोग जो है तुच्छ पेशा, चोरी करना, झूठ बोलना और हिंसा। और आज देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगता है कि कोई देखने वाला है नहीं, जो चाहिए करो, तो ये हो रहा है। फिर सामाजिक श्रेणियां अधिकतर तुच्छ स्तर के जो है शुद्ध होंगे, यानी लोग जो है यानी शूद्र के प्रकार से लोग बर्ताव करेंगे। गाय और बैल उनका भी आकार कम होगा। आध्यात्मिक देवालय, ये भी हमारे लिए थोड़ा एक सोचने का सब्जेक्ट है। आप अभी इस वेकेशन में अगर ऋषिकेश हरिद्वार जाओ, वहां जितने भी मंदिर है, वृंदावन में भी सारे मंदिर, बहुत सारे लोग मंदिर बना रहे, लेकिन मंदिर के अगल बगल में क्या है, गेस्ट हाउस 120 रूम। तो क्या हो रहा है कि आध्यात्मिक देवालय सांसारिक घरों घर होंगे और भौतिक भोग के लिए आवश्यक घर होंगे। तो मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर है और वो क्या है कि सिर्फ गेस्ट हाउस बना के रख रहे, काफी जगह ये है। परिवार के संबंध शादी तक सीमित होंगे और उसके विपरीत और कुछ भी नहीं होगा। पौधे और वनस्पतियां वो भी छोटे हो जाएंगे, ये उल्लेख आता है। उसके पश्चात बादल और मौसम, बताया जाता है कि आसमान में बादल बिजली कड़केगी लेकिन वर्षा नहीं होगी। उसके बाद में सारे निवास विग्रहों और भक्ति से हीन होंगे। आजकल किसी के घर में आप देखते कि मंदिर तो दिखाई देता नहीं। मनुष्य की जो है, मनुष्य का अस्तित्व, जीवन का कर्म गधों जैसा बन जाएगा, तो लोग जो है उनका कर्म गधों जैसा बन जाएगा। लोगों के आवश्यक चीजों का अभाव, जो हमें आवश्यक जो चाहिए उसमें बहुत जो है कटौती होगी। तो मानसिक उपद्रव, लोग सही ढंग से अगर जो आराम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि आजकल लोग इतना ये मोबाइल यूज कर रहे हैं कि इससे लोगों को एक मानसिक बीमारी हो सकती है, ये व्हाट्सएप फेसबुक इससे। तो ये तो ऐसे भी अनुमान किया है कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बीमारी है वो है मानसिक उपद्रव। अभी हाल ही में एक व्यक्ति बता रहे थे कि अमेरिका में एक कुछ डॉक्टर का संगठन है, वो कुछ रिसर्च करना चाहते थे। वैदिक यानी शास्त्र के अनुसार बताया गया कि नींद कब लेना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि हमें कुछ लोग चाहिए कि ये इसमें शोध में संशोधन में भाग ले, तो उनको हम $5,000 देंगे 1 महीने का। लेकिन उसके लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अभी आप सोच लो, आपको जाके सिर्फ सोना है 9 से सुबह 3 बजे तक, वो कार्य करने के लिए गवर्नमेंट 5,000 दे रही है, वो भी करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक उपद्रव। फिर विवाह बंधन, विवाहित दंपति गण अतृप्त होंगे, लोग स्नान नहीं करेंगे, ये तो आजकल गल्फ कंट्री में तो चलता है। फिर बनावटी आभूषण, आप देखते हैं कि आजकल सोने के कितने लोग आभूषण डालते हैं, तो वो भी डालने से भी थोड़ा डर रहता है कहीं चोर कहीं ले न जाए। तो आज मार्केट में हम देखते हैं कि जितने भी ये है ज्वेलरीज है वो सब प्लास्टिक के हैं। चेहरा या स्वरूप, अधिकतर लोग दिखने में भूत प्रेत से पीड़ित पशु जैसे दिखेंगे। आराम में जो है नफरत, सॉरी आपस में नफरत, थोड़े से पैसों के लिए लोग झगड़ा करेंगे। परिवार में शत्रुता, ऐसे बताया था कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी लोग जो है वो झगड़ा करेंगे। समाज में अधिकतर लोग नास्तिक, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बना है नास्तिकों का ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ज्यादा करके लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो है नास्तिक, वो ये सिद्ध करके दिखाते कि किस प्रकार भगवान है नहीं। फिर लोग श्री विग्रहों को प्रणाम नहीं करेंगे। वे ये जो है कुछ कलयुग के लक्षणों के बारे में आपको बताया, तो यहां प्रभुपाद जी ये उल्लेख करते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि कलयुग में लोग ये नहीं जानते कि, यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं अंत में, इस ज्ञान के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और सारे समाज में वंचकों और वंचितों को भरमार हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं द चीटर एंड द चीटेड, इसका मतलब धोखा देने वाले हैं और धोखा खाने वाले हैं। तो लेकिन एक जो है साधु होता है तो उसको सत्य वचन करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज जो राजा रहुगण, उनको जो है जड़ भारत, हाँ, उन्होंने देखा कि अच्छा मौका है अब इस व्यक्ति को ठीक करना है। जैसे भागवतम में आप देखते हैं कि जब नारद मुनि व्यासदेव जी के पास आए थे, उन्होंने उनको डांटा, देखो आपने लोगों को जो उचित देना है वो नहीं दिया, इसलिए आप भी जो है वो खुश नहीं है। तो ये कलयुग की आज की स्थिति है। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न या टीका है तो कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को हमने यहाँ जो पांचवें स्कंद 12वां अध्याय रहुगुण और जो है जड़ भारत, उनके संवाद में किस प्रकार जड़ भारत जो है वो राजा रहुगुण, हाँ, उसको उसका व्यवहार ठीक कर रहे। तो प्रभुपाद जी बताते कि एक साधु वो है जो दूसरों को किस प्रकार व्यवहार करना है वो बताते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।